आ जाओ भाई मजलिस में आ जाओ। देखो बात तो माइक से पहुंच जाएगी लेकिन जो असल मकसूद है वह है ना मजलिस है। मजलिस में बैठने वालों को अल्लाह पाक देते हैं और मजलिस में वो बैठता है जिसके अंदर तलब होती है। और ये हम सब जानते हैं ना अल्लाह पाक बेतलबों को दीन नहीं देते हैं, तलब वालों को दीन देते हैं। आ जाओ थोड़ा सा मुजाहिदा, अभी ये धूप चली जाएगी इंशाल्लाह। आ जाओ जुड़ जाओ। देखो ये हमारे इज्तिमा के आगाज की मजलिसें हैं। अबे अल्लाह पाक हमको जमकर बैठने की, जमकर बातों को सुनने की, उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अभी बहुत सारे भाई हमारे उधर करीब आ जाओ ना थोड़ा सा भाई, थोड़ी देर के लिए करीब हो जाओ। दीन की बातों को कहना और दीन की बातों को सुनना ये एक अमल है ना भाई। और अमल के मुताल्लिक लिखा है कि अमल अमल के तरीके पर होता है तो उस पर जो अजर है वो मिलता है। अबे नमाज पढ़ना एक अमल है, उसका एक तरीका है, उसके मुताबिक होगी तो उस पर जो अजर है वो मिलेगा। और आगे लिखा है कि अमल अमल के तरीके पर नहीं होता है तो उसके ऊपर जो अजर है वो नहीं मिलता। इसलिए मजलिस में बैठना, बातों को कहना, बातों को सुनना ये अमल है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने वाला बना दे। जुड़ जा भाई जुड़ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लजीन सफा अम्मा बाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों और अजीज साथियों, हक ताला जल्ले शानहू का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह पाक ने हमको दीन की बात कहने और सुनने के लिए जमा फरमाया, ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह से हम दुआ करें अल्लाह पाक हमें बातों को सुनकर उस पर अमल करने वाला बना दे। असल अमल है। अल्लाह के यहां जो पूछ गूछ होगी वो मालूमात के ऊपर नहीं होगी, क्या मालूम था आपको, बल्कि बोलो किसके ऊपर होगी, मामूलात के ऊपर। आपके अमल बताइए। और ये जो सारा सजाया गया है ये अमली जिंदगी बनाने के लिए सजाया गया है। ऐ भाई हमारी जिंदगी अमल वाली बन जाए, इसीलिए तो ये शामियाना सजाया गया है। और हम इतने मुजाहिदा करने के बाद यहां पहुंचे हैं, पता नहीं कौन ट्रेनों से आया होगा, कोई बसों से आया होगा, कुछ कोई किस अंदाज से आया होगा, किसने किस अंदाज से मुजाहिदा करके हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने वाला बना दे। असल में दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी और मुख्तसर सी दी है। ये कब कहां किस वक्त किस हाल में और किसकी खत्म हो जाए। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं जिसका खुलासा मफहूम है, पांच चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, जिसमें अल्लाह पाक ने एक मौत का तस्किरा किया है। बोलो किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। अच्छा हमको दुनिया में धोखा लगा है कि हम लोग जीने के लिए आए हैं, हालांकि दुनिया में इंसान जीने के लिए नहीं बल्कि अमल वाली जिंदगी बनाकर मरने के लिए आया है। बोलो दुनिया में कोई जिएगा, जीने की जिंदगी तो अल्लाह पाक ने आखिरत में बनाई है। اسی لیے حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ مفہوم ہے, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. قید خانے میں قیدی آزاد نہیں ہوتا ہے, بولا آزاد ہوتا ہے, اپنی مرضی چلتی ہے اس کی. کھانے کے وقت پہ کھانا, سونے کے وقت پہ سونا, کام کے وقت پہ کام, پنشمنٹ اور سزا کے وقت پر سزا, اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے. ایسے مومن کی مرضی دنیا کے اندر, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آ کر دنیا میں اس بات کو سمجھاتے تھے کہ وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. دنیا اللہ پاک نے آب حیات کے لیے نہیں بنائی کہ پوری زندگی آدمی جیے گا, جیتے ہی جائے گا, بلکہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا جس کا خلاصہ اور مفہوم علماء بیان کرتے ہیں کہ میری امت کی زندگی میں کتنی ہے, 60 اور 70 کے درمیان ہے. تو دنیا جینے کے لیے نہیں ہے, بلکہ دنیا اللہ پاک نے عمل کے لیے بنائی ہے. جینا آخرت میں ہوگا, جہاں مرنا ہوگا ہی نہیں, جہاں جینا ہی جینا ہے, مرنا نہیں ہے آخرت میں. بلکہ روایت میں آتا جس کا خلاصہ اور مفہوم ہے, اللہ پاک موت کو میڑھے کی شکل میں بلائیں گے, اور ایک نبی ہے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوں گا آپ اس کو ذبح کر دیو, اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, ارے وہ جنت والو, یہ جنت اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ہے, نہ جنت کی نعمتیں کم کی جاوے گی, نہ جنت میں سے کوئی تمہیں نکالے گا. تو جینے کی جگہ کون سی بنائی اللہ پاک نے بھائی؟ آخرت بنائی ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. دنیا میں منمانی زندگی گزار کے جانے والے کے لیے بھی اعلان ہوگا, ارے او بدبختو, بد نصیبو, یہ جہنم اور جہنم کے عذاب ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ہے, نہ عذاب کم کیا جاوے گا, نہ جہنم میں سے کوئی نکالے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے جینے کی جگہ کیا بنائی بھائی اللہ نے؟ آخرت بنائی ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے. ہاں, حدیث کے مفہوم میں ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آ کر انسانوں کو دنیا کی غفلت سے نکالتے تھے, بھئی یہ غفلت سے نکل جائے. آدمی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ غفلت ہے, غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. اس نے دنیا کو دیکھا, دنیا کی چیزوں کو دیکھا, یہاں کی چمک دمک کو دیکھا, یہاں کی رنگریلیوں کو دیکھا, اور آخرت چھپی ہوئی ہے. آخرت کیا بھائی؟ آخرت چھپی ہوئی ہے. اس لیے بھائی دوستو بغائزوں, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلی محنت انسانوں کے اوپر ہوتی تھی, انسان صحیح ہو جائے. اس کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے کیسے مل جائے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دوست و بزرگوں اس کے لیے مارے مارے گھومے ہیں. واقعات ہم سب سنتے بارہا سنتے ہیں, اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اس لیے بھائی دوست بغائزو, ہماری جو سب سے پہلی محنت ہے وہ دلوں کے یقین کو صحیح کرنے کی محنت ہے. میرے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے, اسباب, چیزیں, روپیہ, پیسہ, مال, دولت, عہدے, کرسیاں, یہ ساری چیزیں نظر آنے والی ہیں, یہ مخلوق ہے. بولو کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور مخلوق کو نفع پہنچا سکتی ہے بھائی. بلکہ ہم سب تو ایمان والے, ہم سب کا یقین ہے پانی پیاس نہیں بجھاتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, کھانا بھوک نہیں مٹاتا جب تک اس میں اللہ کا حکم نہ ہو, دوائی شفا نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک تربیت فرما رہے ہیں. بیماری آئی تو اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ نے فلاں درخت دکھایا, صاحب اس کے پاس جائیے, اس کے پتے کو چبائیے, شفا مل گئی. پھر عرصہ گزرا, بیماری آئی تو اب اسباب نظر آنے لگے, تو کیا ہوا؟ अल्लाह की तरफ से वही आ रही है कि भाई इसके अंदर शिफा नहीं है, शिफा हमारे हुक्म में है। तो असबाबों का दोस्तों बुजुर्ग आइजो हमारे हमारी निगाह के अंदर हेच और बेबस होना, हेच और बेबस है। असबाब ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। बोलो दे सकते हैं नफा? पानी पीने से प्यास मिटती है, लेकिन आदमी जरूरत से ज्यादा पी ले तो? खाना खाने से भूख मिटती है, जरूरत से ज्यादा खा ले तो? भाई दवाई अल्लाह ने असबाब के तौर पर बनाई है कि फला चीज फला दवा के लिए है। भाई शुगर की ये टेबलेट है, इतनी एमजी आपको लेनी है, ये सुई है आपको इतनी इतना 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 आपको वो लेना है, यूनिट क्या बोलते हैं यूनिट, और ज्यादा ले लिया तो है भाई जी सब में शुगर कम हो तो मुसीबत, ज्यादा हो तो मुसीबत, प्रेशर बढ़ जाए तो मुसीबत, कम हो जाए तो मुसीबत। गरज ये जिस्म भी हमको बताता है कि मैं भी अल्लाह के हुक्म का मोहताज हूं, मेरा रब कहेगा आंखें कहती तो मैं देखूंगी, अल्लाह का हुक्म नहीं होगा देखने वाली आंखें। आदमी सही सालिम रात को तंदुरुस्त होया है, सुबह अल्लाह पाक उसको नाबीना कर सकते हैं, पर होता नहीं होता है। एक आदमी सही सालिम रात को सोया है, सुबह उसको लकवा हो गया, फालिज मार दिया, पैरालिस हो गया, सब क्या हुआ? अल्लाह का हुक्म इसके ऊपर चला है। हर चीज के ऊपर किसका हुक्म है भाई? अल्लाह के हुक्म। इसलिए कुरान में अल्लाह फरमाते जिसका खुलासा मफहूम है, ओ इंसान मेरी चीजें तो इस्तेमाल करता है। बोलो हवा किसकी पैदा की हुई है? हवा में फसाद कौन लाता है और इसमें शिफा कौन लाता है? अभी थोड़ा फसाद हवा में दो चार साल पहले अल्लाह पाक ने ला दिया, लाशों के ढेर लगा दिए, लगाए नहीं लगाए? अच्छा घर में 10 आदमी थे, 10 के 10 बीमार नहीं हुए, उसमें से कितने बीमार हुए? हमारी जुबान में कहते थे कोरोना हो गया, ऐसे बोलते थे। अच्छा होता तो सबको होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? तो घर में से 10 के 10 मेंबर में से किसको हुआ? सिर्फ एक को हुआ। हवा अल्लाह के हुक्म से चलती है, इसमें शिफा अल्लाह के हुक्म से चलती है, इसमें बीमारी और फसाद अल्लाह के हुक्म से आता है। अल्लाह हवा को ज्यादा कर दे, बड़ी बड़ी इमारतें अल्लाह पाक इसको कागज की तरह उड़ा दे, कोई पूछने वाला नहीं अल्लाह की ताकत के सामने। कुरान में इसी कौमों का जिक्र अल्लाह पाक ने किया है कि इनके यानी ताकतवर कौमें, ऐसे हवा के आजाब के जरिए से अल्लाह ने ऐसी बड़ी बड़ी ताकतवर कौमों को हलाक किया है। हाँ आग नफा नुकसान में अल्लाह की मोहताज है। बोलो आग की तासीर क्या है? जलाना है। आग की तासीर जलाना, आग की तासीर जलाना है, हदीस के मफहूम में है। नमाजी नमाज की पाबंदी के साथ जिंदगी गुजारने वाला इसके 8 आजा को आग जहन्नम की आग नहीं जला पाएगी। तो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे जला सकती है? बोलो जला सकती है? अल्लाह का हुक्म है, इस पर पानी डुबा नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है, चाकू और छुरी काट नहीं सकती है। ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाकियात बयान करके अल्लाह पाक ने हम इंसानों को समझाया है, आप हवा हमारी इस्तेमाल करते हो, पानी हमारा इस्तेमाल करते हो, ग़िज़ाएं हमारी इस्तेमाल करते हो। एक आदमी को शकर में नफा है और एक आदमी को शकर में नुकसान है, इसकी तासीर किसके हाथ में? बोलो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। कुरान कहता वो इंसान जो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह को नहीं पहचानता, कुरान कहता वो इंसान इंसान कहलवाने के लायक नहीं, वो जानवर से बदतर है। किसे बदतर है? उलाइका कल अनआम बलहुम अजल। कुरान कहता वो इंसान इंसान नहीं, वो जानवर से बदतर है। ये बागात वाले होते ना, फार्म वाले बागात वाले, ये अपने रखवाली के लिए कुत्ते पालते हैं। आपके यहां होता है ऐसा? फार्म वाले कुत्ते पालते हैं, बड़े बड़े कुत्ते रखते हैं, ये अल्सेशन है, डोबरमैन है, फलाना है, फलाना है, फलाना है, उसकी किस्में हैं, है भाई। अच्छा आपने कभी सुना उसने सेठ को काट लिया, है भाई। एक साहब ने मिसाल दी कि अगर किसी ने किसी को अपने घर बुलाया कि आप 4 बजे आइए मेरे यहाँ, वो हाजी साहब सो रहे थे और हम गए उनके घर 4 बजे, अब दरवाजे पे लिखा था बेवर ऑफ डॉग, कुत्ते से सावधान। हमने सोचा हमको क्या, हाजी साहब ने बुलाया तो हम अंदर चले गए, तो कुत्ता दौड़ के आया, अभी क्या करे आदमी। ये लिखा है किताबों में कि हम कुत्ते को ना देखे, हम किसको देखे, हाजी साहब को देखे। बुलाया किसने, ओ हाजी साहब, अब हाजी साहब ने देखा मेरा कुत्ता उसके पीछे पीछे, हाजी साहब ने उसको बोलो कंट्रोल होगा नहीं होगा। ऐसे दुनिया का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है, इसका चढ़ाव, इसका उतार, इसका नरखा, इसका अर्जा, इसका भारी होना, इसका कम होना, है भाई। अभी सर्दी के मौसम में सर्दी का नहीं होना, अभी ये दिसंबर के महीने में है भाई पसीना रहे, असर की नमाज में मैं तो वहां भीग गया। बोलो दिसंबर में सर्दी होती नहीं होती है, सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अल्लाह ने जाब्ता बनाया है कि जब बंदों के जिस्म से निकलने वाले आमाल ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ होते हैं तो अल्लाह का गैबी निजाम फिर हरकत में आता है। हाँ, फिर हवाओं में फसाद फैलता है, हवाओं में जहर चलता है, पानी नुकसान देने वाला बनता है। हाँ, जो चीजें फायदा मंद है उन चीजों में अल्लाह पाक नुकसान डालते हैं। क्या हुआ, इंसान के जिस्म से निकलने वाले आमाल ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो रहे हैं। आंखें वो नहीं देख रही है जो अल्लाह का हुक्म है, जुबान वो नहीं बोल रही है जो अल्लाह चाहते हैं कि अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की पाकी बयान करें। हाँ, अभी तो नमाज में बोलो हम सूरह फातिहा पढ़ते नहीं पढ़ते, रूटीन के हिसाब से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, रूटीन के हिसाब से पढ़ते हैं, कहीं जोर से धड़ाका हो तो हम भूल जाए कौन सी आयत पढ़ते हैं हम। अलग किताबों में लिखा है बंदा जब नियत बांधते अल्लाह अकबर कहता है और सना पढ़ता है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसके बाद सूरह फातिहा शुरू करता है, अल्लाह हर आयत पे जवाब देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमीदनी रब्बी, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। दोस्तों बुजुर्गों, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की मेहनत इस बात की होती थी कि वो आकर इंसानों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ते थे, ओ इंसान तुम किसके लिए पैदा किए गए हो, हमारी पैदाइश किसके लिए भाई, अल्लाह की इबादत के लिए है, अल्लाह की इताअत के लिए, फरमाबरदारी के लिए, अल्लाह के हुक्मों पे चलने के लिए है। कुरान कह रहा है इंसान और जिन्नात को तो अल्लाह ने महज अपनी इबादत के लिए पैदा, और कोई मकसद नहीं है दुनिया में आने का, दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा इकराम की जमात के ऊपर इस बात की मेहनत की, असबाब से, चीजों से और शक्लों से, सूरतों से, नजर आने वालों से, अपनी मेहनतों से, अपने करने से, हर चीज से निकाला, साहब आप इससे निकलिए, दुकान मजहर है, खालिक नहीं है, गाय बैल भैंस ये मजहर है, खालिक नहीं है। दूध के वक्त पे दूध ये अल्लाह के खजाने से आता है, भैंस के थनों में दूध बराह रास अल्लाह अपने खजाने से डालते हैं, अंदर फैक्ट्री है जो बनता है दूध, अरे बोलो अंदर फैक्ट्री बनता है। ऐसे दुकान मेरी मजहर है, खालिक नहीं है, इसके अंदर नफा अल्लाह डालते हैं, अल्लाह का हुक्म है दुकान बनाओ, माल सजाओ, अपने बस की मेहनत करो, मुकद्दर की रोजी का देना, ग्राहक के लाना ये अल्लाह के जिम्मे है। किसके जिम्मे है भाई, अल्लाह के जिम्मे है। अब दोस्तों बुजुर्ग आइजों, अंबिया अकरम सलाम के बाद हमारे नबी ताजदार मदीना फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से जो ये मेहनत चली है ये दिलों के यकीन को सही करने की मेहनत है। हमारा यकीन पूरा का पूरा अल्लाह की जात के ऊपर आ जाए, किसके ऊपर आ जाए, अल्लाह की जात के ऊपर। हाँ, अभी तो ठोकर लगे तो कौन याद आता है भाई, सर्दी हो गई ना, ठंडा पानी पी लिया था मैंने. बोलो जुबान के बोल कैसे है हमारे यहाँ भाई, जुबान के. हाँ, दूध पीने से मुझे ये हो जाता है, है? हालांकि नफा नुकसान के मालिक कौन है. अब ये इतने सारे बुत मेरे दिल के अंदर है. वहां तो काबा के अंदर 360 रखे हुए थे, उसकी नफी कराई रही. अभी अंदर कौन है? मेरी मेहनत से, मेरे करने से, मेरी हुनरमंदी से और मेरी सलाहियत से, मेरी डिग्री से, मेरी दुकान से, मेरे खेत से और पता नहीं किससे किससे सब. अभी इतने सारे बुत लेकर मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, अल्लाह अकबर नमाज पढ़ रहा हूं और दिल में कितने बुत हैं. अल्लाह के सामने सजदे में सर झुका रहा हूं, सुबहान रब्बी अल आला. ये जुबान के बोल बोल रहे हैं लेकिन अंदर किसका यकीन है? जो मेहनत, ये जो शामियाना सजाया गया है ना दोस्तों बुजुर्गों, ये इसकी मेहनत है. अंदर से बातिल निकले हमारे, गैरुल्ला निकल जाए, अल्लाह का यकीन आए. छोटा हो बड़ा हो, देहात का हो शहर का हो, अजमी हो अरबी हो, कैसा भी हो, अनपढ़ क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो, हर एक की जरूरत है अल्लाह का यकीन 100% दिलों में लाना. ये हर एक की जरूरत है. इसलिए कि मरने के बाद सब कहां जाएंगे वो बोलो ना भाई. कब्रिस्तान के हवाले कर दिए जाएंगे, नहीं कर दिए जाएंगे, और सब वो डाल के आ जाएंगे. और फिर कौन आएगा? हाँ भाई बोलो कौन आएगा? अरे बोलो, बयान नहीं, मुजाकरा है अपना. कौन आएगा और क्या पहला सवाल करेंगे? हाँ भाई जोर से बोलो ना, तेरा रब कौन है? अब दिल में क्या क्या बसा हुआ था ए भाई, दिल में क्या क्या लेकर गया है ये? मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा खेत, मेरे नारियल के बागात, और मेरा फला, मेरे ओहदे, मेरे कुर्सियां. अब इतने सारे बुध लेकर गया है और जुबान को अल्लाह पाक ताला लगा देंगे, जुबान नहीं बोलेगी, अंदर का यकीन बोलेगा. तो अंदर क्या है देखो, इसलिए किताबों में लिखा है कि कबर का जो सवाल है ना, उसमें अल्लाह ने ये नहीं पूछा है कि तेरा अल्लाह कौन है, तेरा खुदा कौन है. क्या पूछा है? तेरा रब पालने वाला कौन है? पालने वाला अल्लाह. हम सबको सही समझ नसीब फरमा दे दोस्तों बुजुर्गों. ये मेहनत है ना, इसीलिए मेहनत हो रही है कि हम अल्लाह को रब माने. अल्लाह मेरा रब है, मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला अल्लाह है. मैं जो खाना खाता हूं इसको हजम तक पहुंचाने वाला कौन है बोलो? अल्लाह है. हम एक मुल्क के सफर में थे, हमारे साथ एक मास्टर साहब थे, उनका रात को पेशाब बंद हो गया. क्या बंद हो गया? पेशाब. अब पराया मुल्क परेशान, रात को 2 बजे से मछली की तरह तड़प रहा है वो आदमी, मछली की तरह दीवार पे सर मार रहा जोर जोर से. अरे मास्टर साहब सर फूट जाएगा, मैं क्या करूं, मुझे पेशाब नहीं हो रही है. 3-4 घंटे के बाद वहां के लोग आए और उनको अस्पताल में ले गया, नली लगाई, नली लगाने के बाद पेशाब हुआ. बोलो मेरी आंखें गलत देख रही है, जुबान गलत बोल रही है, कान गलत सुन रहे हैं, पैर अल्लाह की नाफरमानी में चल रहे हैं, मेरे जिस्म से निकलने वाले आमाल ये अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं, इसके बावजूद भी इस मालिक ने कभी मेरा पेशाब का खतरा नहीं रोका है. बोलो रोका है? जुबान चकचक चकचक बोलती है, कभी जुबान में लड़खड़ाहट नहीं अल्लाह पाक ने लाई कि तू इतना बड़ा नाफरमान, तूने हराम का लुकमा खाया है, आज के बाद तेरी जुबान नहीं बोलेगी, तू गूंगा हो जाएगा. बोलो उस मालिक का करम है, उसने कभी हमको गूंगा नहीं किया है. अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की मेहनत इस मालिक को पहचानने की होती थी कि इंसान दुनिया में रहकर इस रब को, इस मालिक को पहचान कर जिंदगी गुजारे. अल्लाह को पहचान कर जिंदगी गुजारना ये असल है. इसलिए कब्र का क्या सवाल होगा भाई? रब किसको मान कर आए हो ये बताइए. आपकी दुकान रब थी, आपको पालने वाली आपकी भैंस, फैक्ट्री, कारखाने थे, या आपको पालने वाला बराह रास्त आपका रब था? कौन था? रब था. अरे सोचो तो सही दोस्तों बुजुर्ग आइजो, हम तो खाना खाने में अल्लाह के मोहताज है, वो ना खिलाने पावे बोलो कोई खिला सकता है, वो भूखा मारने पावे कोई खिला नहीं सकता, वो खिलाने पावे कोई भूखा मार नहीं सकता है। एक साहब की मिठाई की 10 दुकानें हैं, मिठाई बनाने के लिए शकर के बड़े बड़े गोडाउन बनाकर रखा है जिसमें शकर भर के रखी है, हर मांगने वाले को खोबा भर भर कर मिठाई देता है, लो खाओ मेरी मिठाई की फैक्ट्रियां हैं और दुकानें हैं, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी में ऐसी बीमारी डाली है चाय में भी शकर नसीब नहीं होती है। अल्लाह समझा रहे हैं तुम्हें 10 मिठाई की दुकान का मालिक बना सकते हैं हम, लेकिन खाने में हमारे हुक्म के मोहताज हो, किसके मोहताज हो, उस अल्लाह के यानी उस अल्लाह को यानी छोड़कर जिंदगी गुजारना, उस अल्लाह के अवामिर के यानी पैरवी नहीं करना और उसके मुताबिक जिंदगी न गुजारना, बताओ हमारे ऊपर जुल्म है नहीं है, है भाई। जिस अल्लाह ने मेरे गुनाहों को ढाक कर रखा है, किसको ढाक कर रखा है, गुनाहों पर पर्दा डालकर रखा है, सत्तारी का पर्दा है, कोई ये उछले कपड़े सबको दिख रहे हैं, सफेद कपड़े माशाल्लाह, कुर्सी पे बैठ के मोटी मोटी बातों करे छे, लेकिन अल्लाह ने गुनाहों पर कपड़ा डाला है। अल्लाह अगर गुनाह जाहिर कर दे, मेरी बीवी मेरे बाजू में बैठने को तैयार न हो, उस मालिक को छोड़कर मैं जिंदगी गुजारूं। अल्लाह पाक ने मुतालबा किया है कि मेरे दीन पर चलो, मेरे बंदो मेरी मान कर चलो, अपनी मर्जी छोड़ दो, रब की मर्जी इख्तियार करो, फिर देखो मरने के बाद कैसे मजे होते हैं। दुनिया में रब चाही जिंदगी गुजारने वाले को अल्लाह पाक आखिरत में बोलो कौन सी जिंदगी देंगे, मन चाही जिंदगी देंगे, लेकिन कब मिलेगी, अभी तो मिलावट वाली है, कैसी है अभी, कैसी है बोलो भाई, मिलावट वाली है। उस रब ने एक नबी भेजकर नबी की जिंदगी का नमूना बनाया कि हमारे नबी हैं, हमारे नबी की जिंदगी के मुताबिक तुम जिंदगी गुजारो, खाना ऐसा होगा, पीना ऐसा होगा, तुम्हारी चाल चलन ऐसे होंगे, तुम्हारे कमाने के नक्शे ऐसे होंगे, तुम्हारी सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी, बल्कि उलमा ने लिखा पैदाइश से लेकर मौत तक की जिंदगी हमारी कैसी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगी। तो फिर मरने के बाद मजे हैं, वरना फिर वो ऐलान करने वाला क्या करेगा, अरे ओ बदनसीबो, बताओ कौन से जुमरे में जाना चाहिए हमको, बदनसीबे वाले में या नसीबदार वालों में, खुशकिस्मत लोगों में। तो उसके लिए यहां जिंदगी की तरतीब बताइए, जिंदगी की तरतीब हमारी बने। हाँ, अंबिया इकराम सलाम की जो बेसत होती थी इसी बुनियाद के ऊपर होती थी कि इंसान नबियों की जिंदगी को फॉलो कर चले, इनके पीछे चले, नक्शे कदम पर चले, इस पर चले नक्शे कदम पर। हम तो दुनिया के लोगों को देखकर चलते हैं, फला ऐसा चल रहा है, इसी तरक्की किया है, फला ने यूं चाल शुरू की और यहां से यहां पहुंच गया। एक बुजुर्ग जा रहे थे रास्ते से, रेगिस्तान का सफर, आपके यहां होता ना समंदर में रेत, रेगिस्तान, उस पर चलो तो कदम पैर के निशान पड़ते हैं। एक बुजुर्ग चल रहे थे, उनका शागिर्द जो था उनके कदम पर कदम रख के चल रहा था, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, प्यारे क्या कर रहा है, कहा हजरत आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। कहा प्यारे मेरे नक्शे कदम पर चलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मैंने जिसके नक्शे कदम पर चलना शुरू किया है तो उस पर चलेगा तो कामयाबी को पहुंचेगा। हाँ, हमारे लिए आइडियल और नमूना कौन है, हमारे नबी है, नक्शे कदम नबी के है, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। अल्लाह हमारे बड़ों मौलाना इब्राहिम साहब की उम्र में बरकत नसीब फरमाए, तंदुरुस्ती आफियत दे, हमारे सर पर साया उनका कायम रखा है। एक मरतबा उन्होंने कहा कि हम सुन्नत को सुन्नत समझ के छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ दें, सुन्नत है, फर्ज थोड़ी है, वाजिब है, सुन्नत है। और फिर उन्होंने कहा सहाबा सुन्नत को सुन्नत समझ कर अदा करते थे कि मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका की क्या है, सुन्नत है। और हम लोग सुन्नत क्यों छोड़ देते हैं, बताओ हमारी तरक्की कैसे हो सकती है। सहाबा ने जमीन से चलना शुरू किया था ना भाई, कहां से चलना शुरू किया था, अरे डगले ने पगले तो चलना शुरू किया था, और फिर कहां से कहां तक पहुंचे। हम लोग खूब बयान करते हैं, उन पे कोई हुकूमत करने को तैयार नहीं था और वो तो ऐसे थे और लड़की को जिंदा दरोगोर कर देते थे, शराब के आदी थे और पता नहीं क्या 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 है ना भाई। यहां से चल के कहां तक पहुंचे, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिसका खुलासा मफहूम है, अस्हाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, इनकी पैरवी करो, इनके पीछे चलो, इनकी इब्तिदा करो, इनके नक्शे कदम पर चलो, अल्लाह तुमको फलाह और बहबूद तक पहुंचा देगा, कामयाबी तुम्हारे कदमों के अंदर होगी। हमें सबका तरीका पसंद है, हाँ? और हमारे नबी का तरीका नहीं पसंद है। उलमा ने लिखा है किताबों में, जो नबी के तरीके पे चलने का आदी होगा कब्र में जाएगा अल्लाह के नबी की शक्ल दे, अरे मैं तो उसी तरीके पे चल के आया हूं, ये तो मेरे नबी है, और नबी भी इसको अपने गले से लगाएंगे कि मेरा उम्मती है, मेरे नक्शे कदम पर चल के आया, इसने एक एक तरीके को फॉलो किया है, इसका चेहरा ऐसा था जैसा मैं चाहता था, इसकी नींद ऐसी थी जैसे मैं चाहता था, इसका सुबह से शाम तक की जिंदगी मेरी मर्जी के मुआफिक थी। हाँ, ये जिंदगी सिखाई गई है, जिंदगी सिखाई गई है। इसके लिए माशाल्लाह देखो, ये इतनी सारी मेहनतें हुई हैं, इतना बड़ा शामियाना सजाया गया है, अबे किसके लिए, ये कल निकाह हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 लोगों का, है बोलो, बोलो भाई, है भाई, नहीं, हम सब की हिदायत का एक फैसला हो जाए, रब्बानी लहर चले अल्लाह की तरफ से, और मैं भी उस जुमरे के अंदर आ जाऊं जिस जुमरे में अल्लाह के नबी फरमा रहे कि बाज़ लोग आखिरत में दाहिने हाथ वाले हो गए और बाज बाएं हाथ वाले हो गए, मेरा शुमार दाहिने हाथ वालों में आ जाए। हाँ, इसके लिए क्या करना होगा भाई, है भाई, हम लोग सबसे पहले वाले लोग हैं, पहली सफ के लोग हैं, किसको भाई, बोलो भाई कैसे, पहली सफ के लोग हैं, बोला है नहीं, अल्लाह ने पहले क्यों पहुंचाया, इसके ऊपर गौर करें हम, अल्लाह ने इतना जल्दी इतना पहले हमको क्यों पहुंचाया, जैसे लोग किसी उज़र की वजह से रुक सकते थे, बताओ अल्लाह मेरे लिए वो उज़र ला सकता था, नहीं ला सकता था, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे लाने वाला कौन है, अल्लाह है, अल्लाह ने यहां तक पहुंचाया है, अब मैं अपनी बस की मेहनत करूंगा, बोलो क्या करेंगे भाई, अपने बस की मेहनतें, मजमे में जुड़ना, मजमे को जोड़ना, अपनी जात से जुड़ना, तो मुझे देखकर लोग भी जुड़ेंगे, बस करोगे इंशाल्लाह भाई, है भाई, अपने बस की मेहनत हमारे जिम्मे है, क्या है भाई, अपने बस की मेहनत। एक बुजुर्ग के रास्ते से जा रहे थे तो फहाशी कड्डा होता है ना, फहाशी कड्डा, पता चला कि ये औरत मुसलमान है, तो उसके दरवाजे पे जाकर बैठ गए। अब वो औरत ने सोचा कि यार ग्राहक के आने का वक्त है, अब तो अल्लाह वाले आके बैठ गए तो क्या करूं, इल्तिजा करने लगी, आप चले जाइए हजरत, बोले मेरी एक बात मान ले, बोले एक ने सो मानूंगी, आप बोलो क्या है, तूने कहा तू गुसल कर, कपड़े बदल, 2 रकात नमाज पढ़। औरत को तो जल्दी लगी थी, इसलिए कि उसका तो वक्त जाया हो रहा था, उसने जल्दी जल्दी गुसल किया, अच्छे कपड़े पहने, नमाज की नियत बांधी, सजदे में गई, यहां बुजुर्ग ने हाथ उठाया, मालिक मेरे बस की मेहनत थी तेरे सामने झुकाना, मैंने इसको झुकाया है, आगे का मसला तेरे हाथ में है, लिखा है किताबों में, उसने सर उठाया, अल्लाह ने वली बनाया उसको। ऐसे हमारे नहीं बुलाए गए हैं, हम लाए गए अल्लाह की तरफ से, एक निजाम चलाया हमारे लिए, वरना जैसे औरों को हालात ने रोका, हम हमारे ऊपर भी हालात आकर हम भी घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा कल सुबह आज समझ रहे, नहीं समझ रहे हो, हाँ, एक रब्बानी लहर चलेगी, हाँ, इसमें अपने आप को पेश रखना भाई, रखोगे इंशाल्लाह भाई, पेश आगे रखना, हाँ, तकाजों को पूरा करना, सहाबा तकाजे को पूरा करते थे, हम लोग तकाजे से क्या करते, अरे बोलो, है भाई, है तो सहाबा में एक वाकया लिखा है, साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मैदान में देख रहे हैं, एक नौजवान बच्चा ऊंटों की टांगों में छुप रहा है, कब पकड़ के निकाला, देखा मेरा भाई उमर है, कहा उमर क्या कर रहे हो, कहा भाई तुझे पता नहीं है अल्लाह के नबी ने जंग में जाने से मना किया है, मैं चाहता हूं मैं इसमें जाकर शहादत का जाम पी लूं, आज ये जज्बात फना हो गए, अरे हाँ तो तश्कील वाले को देख के क्या होता, पचास पचास वाक्यात दिल में आ जाते हैं, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, है भाई। और जब इसकी नियत ऐसी रहती है तो अल्लाह पाक भी इसके ऊपर हालात लाते हैं, तेरी नियत ही ऐसी है तो ले हालात। इसलिए कि अल्लाह का जाब्ता है, जैसा गुमान बंदे का वैसा अल्लाह का फैसला। वो दो छोटे बच्चे, एक को जंग में जाने को, एक को कहा आप जा सकते हैं जमात में, एक को कहा आप वापस जाइए आप छोटे हैं, तो छोटे वाले ने तरकीब लगाई और अपने चचा की सिफारिश लेकर पहुंचा और यूं कहा अल्लाह के नबी मेरा कुआं मजबूत है, आप मुझसे इसकी कुश्ती लड़ाइए, मैं इसको पछाड़ दूंगा। बोला हम सब जानते ना क्यों वो बोल रहे थे, तो क्या अल्लाह के नबी नहीं जानते थे? इनके जज्बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर देख रहे हैं और इजाजत दी चलो कुश्ती लड़ो। तो वो जिसको जाने की, वापस जाने की, घर जाने की इजाजत हुई, वो जाने वाले से कह रहा भाई तेरा तो बेड़ा पार है, मेरे लिए भी अगर कुछ हो जाए तो मैं भी शहादत का जाम पी सकता हूं, लिहाजा मेरे पछाड़ने से तू गिर जाना, अल्लाह के नबी मुझे जाने की भी इजाजत दे देंगे। आज ये जज्बात फना हो गए। आज जब तश्कील का मौका आया तो हम लोग बेशक नीचे देखना चाहिए, हम और अल्लाह के अलावा कोई ना हो, मैं हूं मेरा रब हूं, न मेरे बीवी बच्चे कारखाना दुकान मकान खेत कल्याण कोई नहीं, मैं और मेरा रब हो, फिर देखो अल्लाह कैसे फैसले करता है। हाँ अल्लाह के फैसले, अल्लाह तो चाहते है मेरे बंदे मेरे रास्ते में चलकर देख, तेरे लिए राहें ना खोल दूं तो कहना। अकवाले जरी होती ना, अकवाले जरी क्या बोलते वो अनमोल, हाँ अनमोल मोती। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मेरे रास्ते में बिककर तो देख, तुझे अनमोल न कर दू तो क्या, तेरा कोई मोल नहीं लगा सकता है, सहाबा की कोई कीमत लगा सकता है? अरे बोलो कोई सहाबा की कीमत लगा सकता है? छोटे अदना से कोई सहाबी अदना नहीं है, लेकिन मिसाल के लिए लोग कहते हैं एक अदना से अदना सहाबी का मुकाबला पूरी दुनिया की इंसानियत मिलकर नहीं कर सकती है। अल्लाह ने कहां से कहां पहुंचाया, अल्लाह के नबी की मजलिस लगी है, बहुत बड़े बड़े जलील कदर सहाबी बैठे हुए हैं और मुशरिकीन मक्का वहां से गुजरे, इन्होंने देखा कि बड़े बड़े लोग चौधरी किस्म के लोग बैठे हैं, इसमें बिलाल हबशी गुलाम भी है, तो इन्होंने एक शोशा निकाला कि चलो इसको जलील करने का भी मौका लगा। तो अल्लाह के नबी से पूछे ये कौन है, ये अबू बकर है और उनका हसब नसब गिना रहे हैं और ये उमर इबन खत्ताब है, फला फला उससे है, सारे बड़े बड़े सहाबा का अलखाब अल्लाह के नबी इनके यानी खानदानों के साथ गिना रहे हैं। बिलाल हबशी की बारी आई, पूछने वाला खामोश हो गया तो सोने वाले भी जाग गए, तो बयान खत्म हो गया क्या? जब पूरा मजमा मुतवज्जे हुआ तो पूछने वाले ने पूछा ये कौन है, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और हुजूर ने फरमाया भाई ये बिलाल है, बिलाल मेरा है और मैं बिलाल का हूं। कुर्बानी है दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह कुर्बानी को जाए, अल्लाह से बड़ा कुर्बानी का कदरदान कौन है? अम्मी जान है खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने माल की कुर्बानी दी अल्लाह के नबी पर, लगाती गई लगाती गई लगाती गई, वो मक्का की सबसे बड़ी मालदार औरत, लेकिन जिस रोज मरी है 13 पेवन कपड़े में लगे हैं, माल लगाया है। हाँ अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आ रहे हैं और कहा नबी जी अल्लाह पाक सलाम अर्ज कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कितना लगाया कि टाट पहनना पड़ा और बटन की जगह क्या लगाया, अरे बोलो कांटे लगाए। अल्लाह से बड़ा कुर्बानी का कदरदान कोई नहीं है। हम नहीं जानते, हम तो समझते ये फला ऐसा आया, चार महीना आया, पैसा लेके आया, पता नहीं किस कुर्बानी के साथ आया है, किस अल्लाह कुर्बानी की कदर करने वाले हैं, कोई देखे ना देखे अल्लाह सब कुछ देखता है। वहुस्सिला माफी सुदूर, कुरान कहता जो जो दिलों में होगा अल्लाह उसको निकालने वाले हैं। यहां अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, जिब्रील अमीन आ रहे हैं उसी लिबास के अंदर। कलम साहब ताज्जुब न कीजिए, आसमान के सारे फरिश्तों ने आज ये लिबास पहना है, लेकिन अल्लाह पाक अबू बकर को सलाम अर्ज कर रहे हैं और अल्लाह पूछ रहे हैं ए नबी जी अबू बकर से पूछियो, पूछो क्या इस हाल में खुश है। इसके लिए भाई दोस्तों गाइजो देखो अभी अभी हमारी मजलिसें शुरू होगी है ना भाई, क्या होगा भाई अभी हमारा इज्तिमा शुरू हो रहा, मजलिस कोई हमारी मजलिस मिस ना हो। है भाई नागानो हो, तकाजे को आगे पीछे करो, पेशाब पाखाने को रोको, हाँ थूकने फूकने की बीमारी इसको थोड़ा दबा कर रखो। बोलो आदमी थूकने फूकने वाला है, रोजे की नियत कर लिया तो इसको इसको फर्क पड़ता है फिर, है भाई पड़ी के घसने वाला 10 पड़ी के घस डाले इसको फूक फर्क पड़ेगा, फूक मारने वाला बीड़ी के चुस्की मार मार के इसके मुंह पे फूक मार दे फर्क पड़ेगा भाई, क्यों नियत किया? ऐसे नियत करके बैठे जब से हमारा काम शुरू होगा जब तक खत्म नहीं होगा ये हमारा एक अमल है। क्या भाई बोलो? हाँ ऐसे इज्तिमा हमारा एक अमल है। आज की जोहर की मजलिस से लेकर या खित्तेवार जमात की जो फजर बाद मजलिस हुई गई यहां से लेकर जब तक दुआ सुभान रब सुभान अल्लाह बिहम्दी नहीं हो जाता वहां तक हमारा एक अमल है। अमल अमल के तरीके पे होगा तो उस पर जो अजर है वो मिलेगा। हाँ इसमें मेरी मर्जी नहीं चलेगी। बोलो नमाज में मेरी मर्जी चलेगी? मैं तो जमात में हूं और मैं रुकू में यासीन शरीफ पढ़ूंगा, बोलो नमाज हो जाएगी? नहीं नहीं बे नहीं, तौर सजदा करे एक सजदे पल्ला ये देते मैं 3 सजदा करूंगा, बोलो हो जाएगी? ऐसे तरतीब, ऐसे हमारी इज्तिमा की तरतीब है। हमारी मजलिस शुरू हुई आज सुबह से, अब जब तक हमारी सुभान अल्लाह बिहम्दी नहीं हो जाता हम अल्लाह के रास्ते में जाने वालों का मुसाफा नहीं हो जाता यहां तक हमारा एक अमल है। जब अमल अमल के तरीके पे होगा तो अमल करने वाला अल्लाह इसको जाया नहीं करेंगे बल्कि अमल का बदला अल्लाह पाक इसको देंगे। तो करोगे इंशाल्लाह भाई? है भाई, और वक्त कीमती है, इसको भाई अल्लाह के जिक्र के साथ, फिक्र के साथ, अल्लाह की याद के साथ। आज दुनिया में सबसे बड़ा आलमिया ये है, हाँ बंदा अल्लाह अल्लाह से गाफिल है। किससे गाफिल है भाई? अल्लाह से गाफिल है। ये जिक्र तस्बीह और अल्लाह की याद दिलाने के लिए है। एक सुभान अल्लाह पर अल्लाह क्या देते हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पर अल्लाह क्या देंगे, अल्लाहु अकबर की निदा के ऊपर अल्लाह मेरे दिल को अल्लाह की बड़ाई अजमत से भर देंगे। हाँ इसके लिए तस्बीहात की पाबंदी हो, हुजूर पर खूब दुरूद और सलाम हो, और दोस्तों बुजुर्गों अपने गुनाहों को सामने रखकर अस्तगफार की कसरत हो। करोगे भाई इंशाल्लाह भाई? अल्लाह पाक हम तमाम को कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह।